जब से वेद को अरमान और नव्यांशी के रिश्ते के बारे में पता चला था, तब से नव्यांशी की वेद से कोई बात नहीं हुई थी। उसे इन सब के बारे में अरमान से ही पता चला था और उसके बाद लीला सीधा शगुन लेकर पहुंच गई थी। नव्यांशी को मन ही मन यही डर सता रहा था कि वेद बिना शादी के उसे और अरमान को साथ नहीं रहने देगा, और जैसे ही वो वेद से बात करेगी, वेद उसे उदयपुर आने के लिए ही कहेगा। नव्यांशी अरमान के साथ रहना तो चाहती थी, पर फिलहाल वो और अरमान दोनों शादी के लिए तैयार नहीं थे। वो इसे ज्यादा टाइम तक टाल नहीं सकती थी। नव्यांशी ने वेद को कॉल किया। उस वक्त वेद शिवांशा के साथ बगीचे में टहल रहा था। नव्यांशी का कॉल देखते ही वेद शिवांशा से बोला, तुम ऊपर चलो, मैं नवी से बात करके आता हूँ। शिवांशा ने उसकी बात पर हामी भरी और बिना किसी सवाल के ऊपर कमरे में जाने लगी। उसके जाते ही वेद ने कॉल रिसीव किया और वहां लगे झूले पर बैठ गया था। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना भाई? नव्यांशी ने वेद के कॉल रिसीव करते ही सबसे पहले यही पूछा। वेद अभी भी शिवांशा को जाते हुए देख रहा था। उसने जवाब में कहा, ये सवाल इसी तरह रिपीट होने वाला है, तुम्हारी शादी होने दो, इसी तरह आधी रात को कॉल करके यही सवाल पूछूंगा। नव्यांशी हल्का सा हंसती थी। वो बोली, इसका मतलब आप भाभी के साथ थे और मैंने सच में आपको डिस्टर्ब कर दिया? हाँ बिल्कुल, मैं वैसे भी उसे ज्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। शुक्र मनाओ तुम्हारी भाभी तुम्हारी तरह नहीं है, वरना वो तो मेरा जीना हराम कर देती, वेद ने हल्के लहजे में कहा। तो आपको ये लगता है कि मैं अरमान का जीना हराम कर दूंगी? नव्यांशी ने मुंह बनाकर कहा। अरमान का पता नहीं, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि तुम उसकी बड़ी माँ का जीना हराम जरूर करना, ताकि वो इस घर का रास्ता भूल जाए, वेद ने गहरी सांस लेकर कहा। इस दौरान वेद ने एक बार भी ये नहीं जताया था कि नव्यांशी ने खुद से आकर उसे अपने और अरमान के रिश्ते के बारे में नहीं बताया, उल्टा उसे किसी और से ही ये सब पता चल रहा था। जैसे ही नव्यांशी को ये एहसास हुआ, वो कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसकी इस चुप्पी का कारण वेद अच्छे से समझ गया था। क्या बात है, हमेशा सबसे बहस करने वाली और दूसरों को चुप करवाने वाली नव्यांशी आज खुद चुप हो गई है, वेद ने उसे कंफर्टेबल करने के लिए हल्के लहजे में कहा। आई एम सॉरी भाई, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं अरमान को लाइक करने लगी हूँ। आपको बुरा लगा होगा ना जब आपको किसी और से पता चला? और अरमान की बड़ी मॉम ने तो हद ही कर दी, वो शगुन लेकर घर पहुंच गई थी, नव्यांशी ने धीमी बुझी हुई आवाज में कहा। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई अब बच्चा नहीं है जिसे किसी को संभालना ना आता हो। लेकिन हाँ, अगर तुम खुद से आकर बताती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। तुम्हारा होने वाला पति तुम्हारी शिकायत लगाने के लिए मुझे कॉल कर रहा था। देखो, उसे पहले ही श्योर कर देना कि मैं शादी के बाद किसी तरह की गारंटी नहीं लेने वाला। उसे तुम्हें पूरी लाइफ झेलना पड़ेगा। वेद बातों ही बातों में नव्यांशी को छेड़ने लगा था। उसका लहजा इतना गंभीर था कि एक पल के लिए कोई और होता तो उसे समझ तक नहीं पाता। भाई, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया है जो वो आपको शिकायत लगाने के लिए कॉल करेगा, नव्यांशी ने झट से कहा। लंबे वक्त बाद नव्यांशी इस तरह खुलकर वेद से कॉल पर बात कर रही थी, वरना अक्सर तो वो काम के बारे में ही बात किया करता था। कुछ देर हल्की फुल्की बातें करने के बाद वेद ने गंभीर आवाज में पूछा, सच कहूँ तो मैं तुम्हारी ही कॉल का वेट कर रहा था, और तुम्हें डिसीजन लेना होगा नवी, क्या तुम अरमान के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो? जानती हो ना राजावत फैमिली कैसी है, शिवांशा को सेफ रखने के लिए मुझे उन्हें लिमिट में रखना अच्छे से आता है, पर मैं यही चाहता हूँ कि शादी के बाद तुम और अरमान उनके साथ ना रहो। वैसे तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, पर तुम्हें लीला राजावत से सावधान रहना होगा। आई होप कि तुमने अरमान के साथ आगे बढ़ने के लिए आगे की हर सिचुएशन के बारे में सोच लिया होगा। वेद ने अपनी तरफ से नव्यांशी को हर सिचुएशन से आगाह कर दिया था, और नव्यांशी से भी ये सब छुपा हुआ नहीं था। वेद की ही तरह उसे भी राजावत फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि राजावत फैमिली के ही किसी लड़के से उसे प्यार होगा, पर उसे अरमान और मनन दोनों ही इतने अच्छे लगते थे कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद नव्यांशी अपने कदम पीछे नहीं लेना चाहती थी। मुझे सब पता है भाई, और डोंट वरी, आप ही की बहन हूँ, उन्हें उनकी हद में रखना अच्छे से जानती हूँ, नव्यांशी ने सख्त आवाज में कहा। तो तुम्हें अरमान से ही शादी करनी है? वेद ने दोबारा पूछा। नव्यांशी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल। ठीक है, तो फिर डिसीजन लो, वेद ने सीधे सीधे पूछा, शादी या सगाई? क्या मतलब शादी या सगाई? नव्यांशी उलझन में आ गई थी। मतलब तुम अच्छे से समझती हो, मुझे अरमान और तुम्हारे एक घर में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर राजावत फैमिली ऐसी नहीं है, शादी करना जल्दबाजी होगा, तो मेरे ख्याल से तुम दोनों को सगाई कर लेनी चाहिए। फिलहाल के लिए तुम उदयपुर आ जाओ और सगाई के बाद वापस चली जाना। अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें अरमान के पास वापस कब तक लौटना है, बस उसी हिसाब से मैं डेट निकलवा दूंगा। जैसा कि नव्यांशी को अंदाजा था, वेद ने उसी हिसाब से उसके सामने शादी या सगाई करने की शर्त रख दी थी। साथ ही नव्यांशी ये अच्छे से जानती थी कि वेद ये सब लीला का मुंह बंद रखने के लिए कर रहा है। सगाई, नव्यांशी ने कुछ पल सोचकर जवाब दिया, लेकिन हाँ, मैं उससे पहले अरमान से बात करूंगी। ज्यादा नहीं तो 2 दिन तो आप हमें दे ही सकते हैं। ठीक है, ले लो। चलो, काफी बातें हो गई हैं। तुम्हारे उदयपुर आने पर बात करते हैं और सोच लेना कि वंश को कैसे समझाना है। वो अभी भी तुम्हारे और अरमान के रिश्ते से खुश नहीं है, वेद ने कॉल को काटने से पहले कहा। अगर आप तैयार हैं तो मुझे किसी और से फर्क नहीं पड़ता। एक बार के लिए अरमान भी मना करता तो मैं उससे जबरदस्ती शादी कर लेती, नव्यांशी ने हंसते हुए कहा। वेद भी हल्का सा हंस दिया था। नव्यांशी से बात करके वेद ने कॉल कट कर दिया था। नव्यांशी खुश थी कि वेद ने उसकी बात मानकर उसे थोड़ा टाइम अरमान के साथ रहने के लिए दिया था, पर साथ ही उसे अरमान को उनकी सगाई के लिए मनाना था। नव्यांशी से बात करने के बाद वेद तुरंत शिवांशा के पास पहुंचा। शिवांशा अभी भी सोई नहीं थी, वो वेद के आने का इंतजार कर रही थी। तुम सो सकती थी, मैं देख रहा हूँ आजकल मेरे चक्कर में तुम्हारा शेड्यूल कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा है। 1-2 दिन अपनी मनमानी कर लो, फिर कॉलेज जाना होगा, तब सब कुछ टाइम से करना है, वेद ने उसे समझाया और फिर बेड पर आकर लेट गया था। उसके कहने पर शिवांशा भी वेद के ही बगल में बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उन दोनों के बीच अच्छी खासी दूरी थी। वेद ने लाइट डिम कर दी थी। शिवांशा ने एक नजर उन दोनों के बीच की दूरी की तरफ देखा और मन ही मन बड़बड़ाकर बोली, अगर इतना ही दूर सोना था तो काउच हटाने की क्या जरूरत थी। एक तो वैसे ही पता नहीं क्यों इनके पास लेटने में इतना डर लग रहा है, ऊपर से जब देखो स्ट्रिक्टली बात करते हैं। किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने की क्या जरूरत है जब घर पर ही प्रोफेसर जैसा पति मौजूद है। शिवांशा मन ही मन वेद को सुनाई जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में कभी वेद उसके पास आने के लिए पहल नहीं करेगा। गुस्से में शिवांशा ने भी दूसरी तरफ करवट कर ली थी, लेकिन तभी उसे वेद का हाथ खुद के पेट पर महसूस हुआ था। उसकी पेट वेद के सीने से सटी हुई थी। इसी के साथ शिवांशा के दिल की धड़कन एक पल के लिए मानो धड़कना भूल गई थी।
उसने अपने दिल पर हाथ रखा और अपनी सांसों को सामान्य करके मन ही मन कहा, इनका क्या मुझे हार्ट अटैक देने का इरादा है। मैं बस हमारे बीच की दूरी को थोड़ा कम करना चाहती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हवा आने की भी जगह ना रहे। प्लीज अपना हाथ हटा लीजिए, वरना मुझे नहीं पता कि सुबह मैं जिंदा उठूंगी भी या नहीं। शिवांशा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी और मन ही मन बोले जा रही थी। वेद को उसकी हालत अच्छे से समझ आ रही थी, क्योंकि वो उसके बेहद करीब था और शिवांशा ठीक से सांस तक नहीं ले पा रही थी। जो भी कहना है वो मुंह पर कहो, वेद बोला, और तुम्हारी सांसें अगर इसी तरह एबनॉर्मल रहीं तो आई एम डैम श्योर तुम्हारे बाकी के सपने जिंदगी भर अधूरे रहने वाले हैं। प्लीज ऐसा तो मत कहिए, शिवांशा ने कांपती आवाज में कहा। उसकी हालत देखकर वेद को हंसने का मन कर रहा था। वो वेद को ज्यादातर इस बात को लेकर ताने मारती रहती थी कि वो उससे दूर रहता है, हमेशा उसके पास आने की जिद करती थी, जबकि वेद सच्चाई अच्छे से जानता था कि अगर वो थोड़ा सा भी शिवांशा के करीब गया तो उसकी सांसें इसी तरह अटक जाएंगी। ठीक है, तो फिर खुद को नॉर्मल करना सीखो, वेद ने गहरी सांस लेकर कहा और तुरंत शिवांशा से थोड़ा दूर हो गया था। उसने अपना हाथ शिवांशा के पेट से हटाना चाहा, लेकिन शिवांशा ने उसके हाथ को पकड़ लिया था। वो तुरंत वेद की तरफ पलटी। वेद के इतना करीब होने पर शिवांशा की हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि वो नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखे। वेद शिवांशा के चेहरे को देख रहा था, जिसकी झुकी हुई पलकों के साथ वो बहुत मासूम लग रही थी। लगता है तुम्हें हर छोटी चीज मुझे ही सिखानी होगी, वेद ने अपनी आंखें रोल करके कहा। शिवांशा ने तुरंत उसकी तरफ देखा तो वेद ने उसे समझाया, गहरी सांस लेकर छोड़ो और खुद को रिलैक्स करने के लिए पानी पी सकती हो। क्या तुम मेरे टच के साथ अनकंफर्टेबल हो? बिल्कुल नहीं, शिवांशा जल्दी से बोली। वेद ने कुछ हद तक राहत की सांस ली, वरना उसे यही लगा था कि अंकुश ने जो किया था उसके बाद शायद उसके करीब आने पर शिवांशा की ये हालत होती है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी का टच कंफर्टेबल है और किसी के साथ मुझे सबसे ज्यादा सेफ फील होता है तो वो आप हो। बाकी डोंट वरी, मैं सब सीख जाऊंगी और धीरे धीरे अपने सारे सपने पूरे करूंगी, शिवांशा ने मुस्कुराकर कहा। और इस बार बिना किसी झिझक के उसने अपना सिर वेद के सीने पर रख दिया था। उसे वेद के दिल की धड़कन किसी संगीत की तरह महसूस हो रही थी। शिवांशा ने सिर उठाकर वेद की तरफ देखा और उसे छेड़ते हुए बोली, हार्टबीट तो किसी और की भी हाई हो रखी है। हाँ, लेकिन फर्क देखो ना, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ हूँ जैसी हरकत नहीं कर रहा। जिंदा इंसानों का दिल इसी तरह धड़कता है और ये नॉर्मल है जब हम किसी उस इंसान के करीब जाते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, वेद ने काफी हल्के लहजे में कहा। तो फिर आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे थे, शिवांशा ने मुंह बनाकर कहा। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह सांस लेना नहीं भूला था। चलो अब सो जाओ, वेद ने शिवांशा को अपनी बाहों में लिया और उसे धीरे धीरे सहलाने लगा ताकि वो नॉर्मल महसूस कर सके। कुछ ही देर में शिवांशा नींद के आगोश में थी। वेद ने उसे कंफर्टेबल पोजीशन में तकिए पर लिटाया और उसके पास ही लेट गया था। अगली सुबह शिवांशा वेद की बाहों में सिमट कर सोई हुई थी। हमेशा की तरह वेद की नींद पहले टूटी थी और उसने उठते ही सबसे पहले शिवांशा के फोरहेड पर हल्का सा किस किया। लो, तुम्हारा पहला सपना पूरा कर दिया, पर अफसोस तुम सोई हुई हो, वेद ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा और शिवांशा के पास से उठ गया था। शिवांशा को नींद में कुछ भी एहसास नहीं हुआ। वो ये तक नहीं जानती थी कि वेद बहुत बार नींद से उठते ही उसके फोरहेड पर किस करके उसे प्यार से सहलाता था, तो उसका ये सपना वो कब का पूरा कर चुका था। आज भी वो बेखबर होकर सोई हुई थी और वेद उसे जल्दी उठाने के बजाय जिम एरिया की तरफ बढ़ गया था। वेद जिम की तरफ जाते हुए अपना मोबाइल चेक कर रहा था कि उसे सबसे पहले लीला का मैसेज दिखाई दिया। मैंने सगाई के लिए 3 दिन बाद की डेट निकाली है। सारे अरेंजमेंट राजावत फैमिली की तरफ से होंगे। तुम्हें बस नव्यांशी को लेकर आना है। उसका मैसेज देखकर वेद ने आंखें घुमाई। वो जानता था कि लीला इतनी आसानी से अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली है। अगर वो सगाई की उससे बिना पूछे प्लानिंग कर रही थी तो जाहिर सी बात है कि उसने शिवांशा को भी नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ना कोई तरीका सोचा ही होगा। चलो वेद और शिवांशा के रोमांटिक मोमेंट दिखा ही दिए, बाकी लीला नहीं जानती कि वेद की सोच उसकी सोच से 10 कदम आगे की है। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। आई होप कि आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अगले पार्ट पर मिलते हैं। और चैप्टर मैंने स्केड्यूल किए थे, एरर के चलते पब्लिश नहीं हुए। मैं यहाँ स्केड्यूल लगाती रही और उसने ही मेरे को धोखा दे दिया।